हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय चार दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विध्यकर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूँ। कुछ चीजें हमको इस वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में समझ में आना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इस प्रकार से है। चार वर्ण जो हैं वो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र, चार आश्रम हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। इससे होता क्या है, इससे आत्मा का संस्कार होता है। वो आत्मा बद्ध आत्मा जो अपनी पहचान अपने शरीर से करती है, वो गुणों के द्वारा प्रभावित रहती है। जो ब्राह्मण है वो सतगुण में कार्य करते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो रजगुण में प्रमुखतः कार्य करते हैं, वैश्य रजगुण और तमगुण से मिश्रित रहते हैं, और जो शूद्र हैं वो तमगुण से प्रभावित रहते हैं। तो ये सभी लोग अपने गुणों के अनुसार जब कार्य करते हैं और वो कार्य वेदों के अनुसार होते हैं, तो उनका हृदय का शुद्धिकरण धीरे धीरे होता है और फिर वो ज्ञान की अवस्था तक आने का आ पाते हैं। जब शुद्धिकरण होता है वो धीरे धीरे इस बात को समझ पाते हैं कि किस प्रकार से वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। ये वर्णाश्रम की जो पद्धति है इससे आत्मा का संस्कार होता है, बद्ध आत्मा का संस्कार होता है। लेकिन भगवान ये समझा रहे हैं कि भले इस सृष्टि को भगवान ने किया है, लेकिन भगवान इस सृष्टि के नहीं है। इन चार वर्णों और आश्रम में भगवान है नहीं। यद्यपि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो गुरुकुल में भी जाते हैं और क्षत्रिय के अनुसार भी क्षत्रिय के आवेश में कार्य करते हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार से एक ब्राह्मण एक वैश्य एक शूद्र एक क्षत्रिय को अपने कार्य करने की जरूरत है ताकि उसका हृदय शुद्ध हो, उस प्रकार से भगवान को एक क्षत्रिय के रूप में कार्य करने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय के शुद्धिकरण करने के लिए वो कार्य करने की उनको आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए कि इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो अव्यय हैं और अकर्ता हैं, यानी कि इन क्रियाओं में को करते हुए भी इन क्रियाओं से वो बंधते नहीं हैं और इन क्रियाओं से उनका कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता उनको नहीं है। तात्पर्य भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये चीज भगवान के द्वारा रचित है इसलिए समाज से हम इसे कभी भी इसको हटा नहीं सकते हैं। इसका स्वरूप विकृत जरूर हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा रहती है। जैसे कि आजकल के साइंटिस्ट ब्राह्मण के समान हैं, बस उसका रूप विकृत हो गया है। वो बुद्धिमान वर्ग है लेकिन बुद्धिमान वर्ग भगवान के अनुशासन में कार्य नहीं कर रहा है। जो सैनिक हैं आर्मी वगैरह इत्यादि हैं वो क्षत्रिय हैं, वैश्य समाज तो है और शूद्र तो है ही, लेकिन ये दैवी वर्णाश्रम नहीं है, आसुरी वर्णाश्रम, जिसमें हर वर्ण एक दूसरे का शोषण करना चाहता है। लेकिन जो भगवान का सृष्टि है उसमें एक वर्ण दूसरे वर्ण का से आदान प्रदान करता है ताकि पूरा समाज भगवान की सेवा कर सके। हम इसको तात्पर्य में पढ़ते हुए आगे देखेंगे। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, ये तो खैर आप समझ ही सकते हो। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमगुणी होते हैं। तो इन सबकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी थी। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। तो एक बात हम यहां समझ रहे हैं कि भगवान ने इसकी सृष्टि कर रही है ताकि जो बद्ध जीव हैं उनका संस्कार हो, लेकिन इससे करने के बावजूद भी भगवान एक इंसान नहीं है, भगवान कोई जीव नहीं है जिसको शुद्धिकरण की आवश्यकता हो। इसलिए भगवान भले ही ऐसा लग रहा है कि मानव समाज के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का उनका लीला होती है, लेकिन उस लीला को हमें वर्णाश्रम के अनुसार उसको नहीं सोचना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो एक आदर्श गृहस्थ थे, भगवान आकर के यहाँ पे आदर्श गृहस्थ की कार्यों को संपादन करते हैं, लेकिन इसकी करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भगवान आगे भी बताएंगे कि क्यों करते हैं, ताकि लोगों में एक उनको उदाहरण प्रस्तुत हो। लेकिन भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनकी इच्छा मात्र से सारे उनके इच्छाएं पूर्ण, उनके जो भी कार्य होते हैं वो संपन्न हो जाते हैं। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु पशुओं को, क्षमा कीजिएगा, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से उठाने के लिए उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। ये बहुत अच्छी लाइन है। जैसे कि पशुओं में शादी का कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन विवाह का प्रावधान मनुष्यों में होता है। ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ण में ही शादी होती है, फिर क्षत्रियों की वर्ण क्षत्रियों में होता है शादी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का विवाह संस्कार की व्यवस्था की गई है, ताकि जो आत्मा की चेतना है वो पशुओं की तरह केवल भोगोन्मुख न रहे, बल्कि नियमों से बंध कर क्रमशः शुद्ध होती चली जाए। और जब वो पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तब वो जा करके कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकेंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। किसी विशेष व्यक्ति को किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। थोड़ा ही बात समझने वाली बात है। हर जन्म में मैं अपने पूर्वकालिक कर्मों के अनुसार गुणों का संग करता हूं, विभिन्न परिस्थितियों में मैं रहता हूं, और उसके अनुसार मेरा स्वभाव बनता चला जाता है। तो कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, मान लीजिए क्षत्रिय परिवार में लेता है, तो क्षत्रिय स्वभाव पहले के द्वारा, पिछले जन्म के द्वारा तो उसके मन में है ही, संस्कार हैं ही, साथ साथ उस परिवेश में जब वो जन्म लेता है तो फिर वो संस्कार को और प्रोत्साहन मिलता है, और फिर वो और क्षत्रिय की तरह कार्य करता है। तो इसके लिए अगर बोला जाए कि तुम ब्राह्मण की तरह कार्य करो, तो उसके लिए मुश्किल होगा। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में इस प्रकार का गर्भधान संस्कार किया जाता था कि जो जो ब्राह्मणोचित आत्मा है, जो पूर्व से ही ब्राह्मणिकल कह सकते हैं ब्राह्मणत्व को के प्रति आकर्षित या गुणों से संपन्न आत्मा है, वो उस माँ के गर्भ में आकर्षित हो। और बाद में भी ऐसा परिवेश दिया जाता था कि व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों को धारण कर पाए। तो इस प्रकार से हर वर्ण की शुद्धता को मेंटेन कैसे, मतलब उसको बनाए रखा जाता था, और हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता थी कि व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करे। और इस बात को भगवान ने पहले भी कहा है, आगे भी बताएंगे, कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। और समाज का सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है कि व्यक्तियों को उनके स्वभाव के अनुसार नियोजित नहीं किया जा रहा है। लोग इंजीनियर बनना चाहते ही नहीं हैं, लेकिन समाज के प्रेशर के कारण इंजीनियर बनने के लिए उसको बोला जाता है। इसी कारण से आगे जाकर के वो बहुत असंतुष्ट होते हैं। तो हमारी जो मानसिक और शारीरिक बनावट है, जो गुणों के कारण हुई है, अगर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं या हमें मौका मिलता है कार्य करने के लिए, तो हम बहुत संतुष्ट होते हैं। लोग बोल सकते हैं कि अरे ब्राह्मण तो हम कुछ करते नहीं हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो ये तो बड़ा आसान कार्य है। लेकिन एक्चुअली इतना आसान नहीं है। रोज सुबह उठना, जप करना, भक्ति करना, ये हर व्यक्ति के या शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता, सबकी रुचि भी नहीं होती। तो हर व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार अगर लगे, तो समाज में शांति बहुत बनी रहेगी और सुचारू रूप से समाज चलेगा। तो इसके बारे में लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे अपने शरीर में देखिए, हमारे शरीर में जो सिर है वो कुछ करता नहीं है, लेकिन अगर सिर नहीं हो तो फिर बाकी सारे अंगों को रहने का कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से समाज में अब ब्राह्मणों की कमी हो गई है। आप कहेंगे नहीं, ब्राह्मण तो जन्म से बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, बात केवल जन्म से ब्राह्मण होने की नहीं है। बात है जन्म के साथ साथ व्यक्ति को ब्राह्मण के कर्म भी करने चाहिए। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, दान केवल लेना ही नहीं चाहिए, दान देना भी चाहिए ब्राह्मण को। केवल खुद भगवद्गीता ही ना पढ़े, दूसरों को भी भगवद्गीता के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। तो जब इस प्रकार से ब्राह्मण कार्य करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। और यदि कोई सोचे कि मैं ब्राह्मण बन गया, ठीक है, शास्त्र का ज्ञान मुझे मिल गया और मैं दूसरों को ना दूं, दूसरों को अंधकार में रखूं, तो फिर ऐसा व्यक्ति तमोगुण से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, विरह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हमें इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। बहुत सुंदर बात है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी पहचान कृष्ण के दास के रूप में करता है, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के रूप में। और भगवत सेवा के लिए जो भी आवश्यक होता है उसे वो करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो एक ब्राह्मण की तरह भगवद्गीता पे प्रवचन करे, चाहे मंदिर में झाड़ू लगाए, चाहे वो कोई भी कार्य करे। भक्त का भावना ये रहती है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अगर ये भावना रहती है तो हम बड़ी आसानी से शारीरिक चेतना से निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए दीक्षा के समय हमें सो एंड सो दास नाम रखा है, मान लीजिए कृष्ण दास या गोविंद दास या गोविंद देवी दासी, इस प्रकार से हमको नाम दिया जाता है, ताकि हमारी पहचान जो इस वर्णाश्रम के द्वारा हम अपने से करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ऐसे करना चाहिए, उससे हम हट करके कृष्ण के दास के रूप में अपनी पहचान करें और उसके रूप में हम कार्य करते रहें। तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से कर्म फल उनको नहीं बांटता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।